नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और रतन टाटा, बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन, अभिनेता अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को आमंत्रित किया गया है। अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया ने लोकप्रिय टीवी धारावाहिक रामायण में राम और सीता की भूमिका निभाई है। राम मंदिर ट्रस्ट ने 3000 वीआईपी समेत 7000 से अधिक लोगों को निमंत्रण भेजा है। मंदिर आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले कार सेवकों के परिवारों को भी आमंत्रित किया जाएगा। अन्य आमंत्रित लोगों ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, योग गुरु रामदेव, 4000 संत, लेखक, पत्रकार, वैज्ञानिक और देश भर की प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। संसद भवन परिसर के बाल योगी सभागार में भाजपा की संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 3 राज्यों के साथ मिजोरम और तेलंगाना में बीजेपी की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की है, तो वहीं मिजोरम और तेलंगाना में हमारी ताकत में इजाफा हुआ है। ये कार्यकर्ताओं की सामूहिक जीत है। राज्यों में जीत टीम वर्क को मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं, सभी सांसद विकसित भारत की यात्रा में शामिल हों। 3 राज्यों में जीत पूरी टीम की जीत है। इससे पहले बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। राज्यसभा में बृहस्पतिवार को राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से नफरत फैलाने वाले भाषण देने के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई गई तथा ऐसा करने वाले नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने और आवश्यक कार्यवाही किए जाने की मांग की गई। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन कानून की अस्पष्टता के कारण इसका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। उन्होंने इस पर सभी से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार विमर्श का आग्रह किया। विधि आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए तिवारी ने कहा कि सन 2014 में नफरती भाषण से संबंधित 323 प्रकरण दर्ज किए गए थे, वहीं 2020 में ऐसे प्रकरण 6 गुना बढ़कर 1804 हो गए। उन्होंने कहा कि साल 2022 में 1500 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं और अब तक तो ये संख्या इससे कहीं अधिक बढ़ गई होगी। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के मामले दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र के पुणे से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मजाक मजाक में मनोरंजन के लिए किया गया काम एक लड़के की मौत की वजह बन गया। दरअसल ये घटना है पुणे के हड़पसर औद्योगिक एस्टेट की, जहाँ एक फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट में तीसरे फ्लोर पर खेल खेल में एक लड़के को जान से हाथ गंवाना पड़ा है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार घटना सोमवार सुबह 10:30 की है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट में तीसरे फ्लोर पर मोतीलाल साहू नाम के लड़के के रेक्टम में उसके दूर के रिश्तेदार ने एयर कंप्रेसर से खेल खेल में हवा भर दी। इस वजह से लड़के को शरीर में अंदरूनी चोट आई और उसकी मौत हो गई। मृतक मोतीलाल बाबूलाल साहू 16 साल का था। पुलिस ने उसके रिश्तेदार धीरज सिंह गोपाल सिंह गौंड को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के लोकप्रिय गरबा नृत्य को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किए जाने की प्रशंसा करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि ये देश की संस्कृति की सुंदरता और लचीलेपन के लिए सम्मान है। यूनेस्को ने गुजरात के पारंपरिक गरबा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने के लिए स्वीकृति दी है। शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, गरबा सदियों पुरानी एक नृत्य कला है जो अपने लयबद्ध सामंजस्य से समुदाय को एक साथ लाता है। अमूर्त विरासत सूची में इसे शामिल करना हमारी संस्कृति की सुंदरता और लचीलेपन के लिए एक सम्मान है। उन्होंने कहा, हमारे अपने गरबा के वैश्विक मंच पर चमकने तथा अपनी छटा बिखेरने का ये गौरवशाली क्षण हमें हमारी संस्कृति का और अधिक निष्ठापूर्वक प्रचार प्रसार करने तथा संरक्षित करने की हमारी जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है। भाजपा के एक सांसद ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में मांग उठाई कि सरकार को देश में लिव इन संबंधों पर रोक लगाने के लिए कानून बनाना चाहिए और प्रेम विवाहों में माता पिता की सहमति अनिवार्य की जानी चाहिए। हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सदस्य धर्मवीर सिंह ने निचले सदन में शून्यकाल में ये भी कहा कि देश में प्रेम विवाह बढ़ने की वजह से तलाक के मामले भी बढ़ गए हैं, वहीं लिव इन संबंधों के कारण देश की संस्कृति बर्बाद हो रही है। तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में हाल के विधानसभा चुनावों के दौरान गुमनाम चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक फंडिंग पिछले चुनाव 2018 की तुलना में 400% से ज्यादा बढ़ी है। ये आंकड़े भारतीय स्टेट बैंक ने एक आरटीआई के तहत जारी किए हैं। बुधवार को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्राप्त एसबीआई डेटा से पता चला कि 6 नवंबर को 20 नवंबर तक हुई बिक्री की सबसे हालिया किश्त में 1,006.03 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड बेचे गए। कुल राशि का 99% हिस्सा 1 करोड़ रुपए मूल्य वर्ग के बॉन्ड की बिक्री के माध्यम से जुटाया गया था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।